अथ दशमः परिच्छेदः कुण्डलमण्डित गण्डकटी वरपीठपटी कुनटी तिलकञ्च अञ्चित कुञ्चित मेचक केश गवेश निदेश वशी भवनम् च गोकुलहितकरली करणी मुरली खुरलीचित कामकलम् च यस्य न सत्त्वमहत्त्वानम् धरितुम् तमहम् समहम् महयामि। अब रीति निरूपण के अनंतर अवसर प्राप्त अलंकारों का निरूपण करते हैं। पहले अलंकारों का सामान्य लक्षण कहते हैं। शब्दार्थ योरिति शोभा को अतिशयित करने वाले रस भाव आदि के उपकारक जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म है वे अंगद जकट बाजूबंद आदि की तरह अलंकार कहते हैं। जैसे मनुष्यों के अंगद आदि अलंकार होते हैं उसी तरह उपमा आदि काव्य के अलंकार होते हैं। पूर्वोक्त रीति भी काव्य की शोभादायक है। उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए अतिशाही पद दिया है। रीति शोभा को पैदा करती है उसे बढ़ाती नहीं और अलंकार उत्पन्न शोभा को अतिशय व्यकरण प्रविध करते हैं। अतः अलंकार रीति से भिन्न है। नीरस वाक्य में पड़े हुए उपमा आदि अलंकार नहीं कहा सकते क्योंकि यहाँ अलंकार शब्द करण प्रधान है। अलंक्रियते अनेनेत्यलंकारः अर्थात जो किसी को सुशोभित करने का साधन हो वह अलंकार कहता है। अलंकार रसादिकों को सुशोभित करता है। जहाँ रसाद नहीं है वहाँ वह किसी की शोभा का साधन नहीं अतः वहाँ उसे अलंकार ही नहीं माना जाता केवल विचित्रता मात्र मानते हैं। सरस वाक्य में ही उपमा आदि अलंकार कहते हैं अतः रसादि नपुकुर्वन्तः यह विशेषण दिया है। नीरस वाक्य में उपमा आदि शब्दों का प्रयोग गौण वृत्ति से जानना। शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य के शरीर माने जाते हैं और इन दोनों के अलंकार भी पृथक पृथक होते हैं। यहाँ कारिका में दोनों विकट में शब्द अर्थ का ग्रहण किया गया है। गुण भी रसाद के उपकारक होते हैं और शोभा को अतिशयित भी करते हैं एवं परंपरा संबंध विकट में स्वास्थ्य व्यंजकत्व से वे शब्द और अर्थ में भी रहते हैं। उनमें अतिव्याप्ति न हो इसलिए अस्थिरा यह विशेषण दिया है। गुण स्थिर होते हैं अलंकार अस्थिर होने के कारण उनसे भिन्न है। यद्यपि जैसे अंगद आदि अलंकार शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं और शरीरधारी के उपकारक होते हैं अर्थात शरीर की शोभा को बढ़ाते हुए शरीरधारी की उत्कृष्टता का बोधन करते हैं उसके बलपन को प्रकट करते हैं इसी प्रकार अनुप्रास उपमा आदि काव्यालंकार भी काव्य के शरीर रूप शब्द अर्थ की शोभा को बढ़ाते हैं और काव्य के आत्मभूत रस के उपकारक अर्थात उसकी उत्कृष्टता के बोधक होते हैं। उक्त कारिका में अलंकारों को अस्थिर बतलाने से यह भी तात्पर्य है कि गुणों की भांति इनकी नियत रूप से काव्य में इसलिए आवश्यक नहीं है। शब्दार्थयोः प्रथमं शब्दस्य बुद्धि विशेषत्वात् शब्दालंकारेषु व्यक्तव्येषु शब्दार्थालंकारस्यापि पुनरुक्त वदाभासस्य चिरंतनैः शब्दालंकार मध्ये लक्षितत्वात् प्रथमं तमेवाह आपात्तो यदर्थस्य पौनरुक्त्येन भाषणम् पुनरुक्त अवदाभासः स भिन्नाकार शब्दगः। उदाहरणम् भुजंग कुंडली दक्त शशि शुभ्रांशु शीतगुः जगन्त्यापि सदा पाया दव्याचेतो हरः शिवः। अत्र भुजंग कुंडल्यादि शब्दानाम् आपात मात्रेण सर्पात् व्यर्थतया पौन रूप्य प्रतिभाषणम् पर्यवसाने तु भुजंग रूपम् कुंडलम् विदिते यस्येत्याद्यन्यार्थत्वम् पायादव्यात् इत्यत्र क्रियागतोऽयम् अलंकारः पायात् इत्यस्य अपायात् इत्यत्र पर्यवसानात् भुजंग कुंडली इति शब्दयोः प्रथमस्यैव परिवृत्ति सहत्वम् हरः शिवः इति द्वितीयस्यैव शशि शुभ्रांशु इति द्वयोरपि भाति सदान त्याग इति न द्वयोरपि इति शब्द परिवृत्ति सत्वा सत्वभ्यामस्योभयालंकारत्वम् शब्दार्थयोरिति। शब्द और अर्थ इनमें से पहले शब्द ही बुद्धि में उपस्थित होता है अतः शब्दालंकार ही पहले कहना चाहिए था, परंतु प्राचीनों ने एक शब्दार्थालंकार पुनरुक्त वदाभास को भी शब्द अलंकारों में गिना दिया है, अतः सबसे पहले उसे ही कहते हैं। आपातत इति आपाततः ऊपर ऊपर से विकर्ण सस्री नजर से देखने पर जहाँ अर्थ की पुनरुक्ति प्रतीत होती हो वहाँ भिन्न स्वरूप वाले समानांतर शब्दों में पुनरुक्त वदाभास नामक अलंकार होता है। उदाहरण भुजंगेति सर्पों में कुंडल धारण किए हुए सुव्यक्त शस विकर्म कलंक वाले श्वेत किरण युक्त विकर्म शीतगु चंद्रमा से युक्त चित्त को हरण करने वाले शिवजी सदा अपाय विकर्म विघ्न या विनाश से जगत की रक्षा करें। यहाँ आपात देखने में भुजंग और कुंडली दोनों सर्ववाचक प्रतीत होते हैं और अर्ध की पुनरुक्ति भाषित होती है, परंतु विचारने से कुंडली शब्द का कुंडल वाला यह अर्थ ज्ञात होता है और पुनरुक्त दोष दूर हो जाता है, अतः यहाँ पुनरुक्त वाला भास अलंकार है। इस प्रकार शशि शुद्रांशु और शीतगु इन तीनों शब्दों के चंद्रवाचक होने से अर्थ की पुनरुक्ति प्रतीत होती है, परंतु शशि का अर्थ लांछन युक्त और शुद्रांशु का अर्थ स्वच्छ किरण वाला ज्ञात होने पर यह दोष नहीं रहता। एवं पायात अभ्यास और हरह शिव इनमें भी आपातता पुनरुक्ति प्रतीत होती है, परंतु सदा अपायात ऐसा पदच्छेद ज्ञात होने पर और हर का संबंध चेतो के साथ निश्चित होने पर चित्त को हरण करने वाले जगन मनोहर ऐसा असंश्चित होने से वह दूर हो जाती है। अत्रेति यहाँ भुजंग कुंडली आदि शब्दों का आपात मात्र से पुनरुक्ति भाषित होता है, परंतु पर्यवसान जगत में अंत में भुजंग रूप कुंडल है विद्यमान, जिसके इत्यादि अन्य अर्थों का निश्चय होता है। पायात अभ्यास इन शब्दों में यह अलंकार क्रियागत है, पायात का अपायात में पर्यवसान होता है। इस अलंकार का शब्दार्थालंकारत्व सिद्ध करते हैं। भुजंग कुंडली इन शब्दों में से पहला विकर्ण भुजंग ही परावृत्ति को सहन कर सकता है। यदि भुजंग पद को बदल कर उसके स्थान पर भुजंग का कोई पर्यायवाचक दूसरा शब्द रख दें, तो भी यह अलंकार बना रहेगा, अतः भुजंग शब्द परिवर्तन का सहिष्णु है, परंतु कुंडली शब्द नहीं बदला जा सकता। कुंडली के स्थान पर अवंतसी या कुंडलयुक्त आदि शब्द को रख दें तो फिर यह अलंकार नहीं रहेगा, क्योंकि उस दशा में अर्थ की पुनरुक्ति भाषित ही नहीं होगी, अतः कुंडली पद प्रवृत्ति को सहन नहीं करता। इसी प्रकार हरा शिव यहाँ दूसरा जगत में शिव ही बदला जा सकता है, पहला नहीं। शशि शुभ्रांशु इनमें दोनों परिवृत्ति सह है, अपि शब्द से तीसरे शीतगु शब्द का भी परिवृत्ति शब्द जानना। भांति सदा न त्याग इस पद्यांश में दोनों में से कोई नहीं बदला जा सकता। अरिवध देह शरीर सह सारथि सूत तुरग पादातः भाति सदा न त्याग स्थिरताया मौनित लसीलक अरिणाम बधम ददातीति तादृशी इहारेशाम तेजते शरीण सरवंतास्तानी रहति क्षिप्तीत्य रिव धदेह शरीर सहसा शीघ्रम रथमिः सुष्ठु उतास्तुर्गाः पादाताश्च यस्तसः स्थिरतायाम स्थिरत्वे अगः पर्वतुल्यः अवनितलतिलको भूपतिः सतामानत्या यद्वा सदा अनत्या शत्रुषु अनमनेन भाति शोभते। यहाँ देह शरीर सारथि सूत दान त्याग इन शब्दों में यह अलंकार है, परंतु शब्द परिवृत्ति नहीं है, अर्थात उनके पर्यायवाचक रखने पर यह अलंकार नहीं रहता। भाषा में इसका उदाहरण पुनः फिर राम निकट सो आई इत्यादि हो सकते हैं। इस प्रकार कहीं शब्द परिवृत्ति को शान करने और कहीं न करने के कारण यह पुनरुक्त वाला भाष उभय अलंकार माना जाता है। शब्द अलंकार वही होता है जो शब्द को बदलने पर न रहे। पुनरुक्त वाला भाष कहीं तो शब्द बदलने पर भी बना रहता है और कहीं नहीं रहता। अतः यह शब्दार्थ अलंकार है। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्ये स्वरस्य स्वरमात्र सादृश्यम तु विचित्राभावान् न गणितम् रसाद्यनुगतत्वेन सकर्षेण न्यासोनुप्रास अनुप्रास इति। स्वर की विषमता रहने पर भी शब्द अर्थात पद पदांश के साम्य व्याकरण सादृश्य को अनुप्रास कहते हैं। स्वरों की समानता हो चाहे न हो परंतु अनेक व्यंजन जहाँ एक से मिल जाए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। स्वर मात्र केवल स्वरों की समानता में विशिष्टता नहीं होती, व्यंजनों की समता के समान चमत्कार उसमें नहीं होता, अतः उसे यहाँ नहीं गिना। व्यंजनों की समता के समान स्वरों की समता में अनुप्रास अलंकार नहीं माना है। अनुप्रास शब्द का अक्षरार्थ बताते हैं। रसेति रस भावादि के अनुगत चतुष्ट न्यास को अनुप्रास कहते हैं। यहाँ अनु का अर्थ अनुगत और प्र का चतुष्ट आस का अर्थ न्यास है। रस की अनुगामी प्रकृष्ट रचना का नाम अनुप्रास है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि रस के प्रतिकूल वर्णों की क्षमता को अलंकार नहीं माना जाता। यह अनुप्रासों का सामान्य लक्षण है। छेको व्यंजन संघस्य सकृत साम्यम मध्ये कथा छेकानुप्रास अनेक हेति स्वरूपतः क्रमतश्च रस स्तर इत्यादि क्रम भेदेन सादृश्यम नास्यालंकारस्य विषयः उदाहरणम् मम तातपदानाम् आदाय बकुलगंधानंदी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान् अयमेति मंदमंदम् कावेरी वारी पौनः पौनः अत्र गंधानंदीति संयुक्तयोः कावेरी वारीत्य संयुक्तयोः पावनः पौन इति व्यञ्जनानां बहूनां प्रकृतावृत्तिः छेको विदग्धस्तत्प्रयोज्यत्वादेश छेकानुप्रास। अब अनुप्रासों के विशेष लक्षण कहते हैं। छेक इति व्यंजनों के समुदाय एक ही बार अनेक प्रकार की समानता होने को छेक अर्थात छेकानुप्रास कहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की समानता से यह अभिप्राय है कि स्वरूप से भी समानता होनी चाहिए और क्रम से ही। एक ही स्वरूप के व्यंजन उसी क्रम से यदि दूसरी बार आए तो छेकानुप्रास होगा। रस सरह यहाँ यद्यपि एक ही स्वरूप के व्यंजन र और स दूसरी बार आए हैं परंतु उसी क्रम से नहीं आए। रस में र पहले आया और सरह में स, इसलिए ऐसे उदाहरण इस अनुप्रास के नहीं हो सकते। छेद का उदाहरण आदायति बकुल व्याकरण में मौलश्री के गंध को लेकर पद पद में भ्रमरों को मदान करता हुआ कावेरी के जल कणों से युक्त होने के कारण पवित्र करने वाला यह पवन धीरे धीरे चला आ रहा है। अत्रेति इस पद में गंधानंदी यहाँ पर संयुक्त न और ध की उसी क्रम में एक ही बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ छेकानुप्रास का उदाहरण है। इसी प्रकार कावेरी बार यहाँ असंयुक्त व और र की तथा पावन पवन यहाँ बहुत व्यंजनों व्याकरण प व न की एक ही बार आवृत्ति हुई है। छेद का अर्थ है चतुर पुरुष, उनके प्रयोग के योग्य होने के कारण इसे छेकानुप्रास कहते हैं। अनेकस्य एकधा साम्यम सकृत वात्यनेकधा एकस्य सकृतत्वेश द्वित्यनुप्रास उच्यते। अनेकस्य इति अनेक व्यंजनों की एक ही प्रकार से व्याकरण में केवल स्वरूप से ही क्रम से नहीं समानता होने पर अथवा अनेक व्यंजनों की अनेक बार प्रवृत्ति होने पर यद्वा अनेक प्रकार से व्याकरण में स्वरूप और क्रम दोनों से अनेक बार अनेक वर्णों की आवृत्ति होने पर किंवा एक ही वर्ण की एक ही बार समानता व्याकरण आवृत्ति द्वारा होने पर या एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने पर वृत्यनुप्रास नामक शब्दालंकार होता है। सकृत अपि यहाँ अपि शब्द से असकृत व्याकरण में अनेक बार का भी बोध होता है, इससे पूर्वोक्त अंतिम अर्थ निकलता है। उदाहरण उन्मीलन मधु उचित होते हुए मधु के गंध मिलुद्ध भ्रमरों से कंपित आमों की नवीन मंजरी पर क्रीड़ा करते हुए कोकिलों के मधुर मधुर सुरीले कल कुयीटों से जिनके कानों में व्यथा उत्पन्न हो रही है वे विरही पथिक निवसंत ऋतु के दिनों को ध्यान से चित्त के अवधान के समय प्राप्त व्यकरण में स्मरण द्वारा प्राणप्रिया के समागम सुख से जैसे तैसे जगत में कथम कथमपि बिताते हैं। अत्रेति यहाँ रसोल्ला सरणी इन शब्दों में र और स की एक ही प्रकार से समानता है, केवल स्वरूप ही मिलता है, क्रम नहीं। दूसरे चरण में क और ल की अनेक बार आवृत्ति हुई है और उसी क्रम से हुई है। सभी शब्दों में पहले क आया है, पीछे ल, इसलिए यह स्वरूप और क्रम दोनों से साम्य व्याकरण में अनेकधा साम्य हुआ। प्रथम चरण में उन्मीलन मधु यहाँ एक व्यंजन मकार की एक ही बार और धकार की अनेक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह एकस्य सकदौ के का उदाहरण है। रस विषयक अनुकूल व्यापार से युक्त रचना को वृत्ति कहते हैं, अर्थात जो रचना रस के व्यक्त करने में अनुकूल हो उसे वृत्ति कहते हैं, और उससे अनुगत प्रकृष्ट विन्यास को वृत्ति उपक्रास कहते हैं। यह इस पद का अक्षरार्थ है। एकधा स्वरूपत एव न तु क्रमतोपि अनेकधा स्वरूपतः क्रमतश्च सकृत पित्यपि शब्दात् शकदपि उदाहरणम् उन्मीलन मधुगंध लुब्ध मधुपव्याधूत चूतांकुर क्रीडोत्को किल काकली कल कल रुद्दीर्ण कर्ण जरा नियंते पथि कह कथम कथमपि ध्यानावदाना क्षण प्राप्ता प्राण समा समागम सरोल्लासयमी वासरा। अत्र रसोल्लासयमी इति रसियो रेतधैव साम्यम न तु तेनैव क्रमेणापि। द्वितीय पादे कलयोर सकतेनैव क्रमेण प्रथमे एकस्य मकारस्य सकृत धकारस्य चासकृत रस विषय व्यापारवती वर्ण रचना वृत्ति तदुगतत्वेन प्रकर्षेण व्यसनात् वृत्त्यनुप्रासः उच्चार्यत्वाद् देकत्र स्थाने तालुरदादिके सादृश्यं व्यञ्जनस्यैव सुत्यनुप्रास उच्यते। उदाहरणम् दशां दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दशैव याः विरूपाक्षस्य जैनीस्ताः स्तुमो वामलोचनाः। अत्र जीवयन्ति इति याः इति जैनीः इति अत्र जकार यकारयोरेकत्वस्थाने ताला उच्चार्यत्वात् सादृश्यम् एवं दन्तकण्ठानाम् अप्युदाहर्यम् एष च सहृदयानामतीव श्रुतिसुखावाहत्वात् श्रुतनुप्रासः उच्चार्यत्वात् इति तालु कंठ मूर्धा दंत आदि किसी एक स्थान में उच्चारित होने वाले व्यंजनों की व्याकरण स्वरों की नहीं समता को सत्य अनुप्रास कहते हैं। जैसे दिशेति दृष्टि से जले हुए कामदेव को जो दृष्टि से ही जीवित कराती है, अर्थात भगवान भूतनाथ के भाला नल से भस्म हुए कामदेव को जो अपने कटाक्ष निक्षेप मात्र से पुनर्जीवित करती है, ऐसी विरूपाक्ष जगत में विरूप नेत्र वाले शिव को जीतने वाली सुलोचनाओं की हम स्तुति करते हैं। अत्रेति यहाँ जीवयन्ति या जायनी इन पदों में जकार और यकार एक ही व्याकरण में तालु स्थान से उच्चारित होते हैं, अतः यहाँ सूत्रनुप्रास का उदाहरण है। इसी प्रकार दंतस्थानीय और कंठस्थानीय आदि वर्णों के उदाहरण भी जानना या अनुप्रास सहृदय पुरुषों के कानों को बड़ा ही सुखप्रद होता है, अतः इसका नाम सूत्रनुप्रास है। व्यंजनम यद्यथावस्थम सहाद्येन स्वरेण तु आवर्ततेन्त्योज्ञात्वा दन्त्यानुप्रास एव तत् यथावस्थम इति यथासंभवम् अनुस्वार विसर्ग तद्युक्ताक्षर विशिष्टम् एतत्त्रायण पादस्य पदस्य चान्ते प्रयोज्यः पादान्तगो यथा मम केशः काशस्तव कविकाशः कायः प्रकटित कर्म विलासः चक्षुर्दग्धवराटक कल्पम् त्रिदिनचेतः काममनल्पम् पदान्तगो यथा मन्दम् हसन्तः पुलकम् वहन्तः इत्यादि व्यञ्जनम् इति पहले स्वर के साथ यदि यथावस्थ व्यंजन की आवृत्ति हो तो वह अंत्यानुप्रास कहता है। इसका प्रयोग पद अथवा पाद आदि के अंत में ही होता है, अतः इसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे यथावस्थ कहने से तात्पर्य यह है कि यहाँ यथा संभव अनुस्वार विसर्ग स्वर आदि पूर्ववत ही रहने चाहिए। अतएव अंत्यवसाने भावोन्त्यः दिगादित्वाद्यत् स चासावानुप्रासः यह अक्षरार्थ अनुगत होता है। तर्कवागी जी ने अंत एवान्त्यः व्युत्पत्ति लिखी है, यह व्याकरण से विरुद्ध है। श्वास में यह प्रत्यय यहाँ नहीं हो सकता। पादांतगत का उदाहरण केश इति, केश घास के फूल के समान श्वेत हो चुके और देह ऐसा हो गया जैसा दो पैरों से खड़े हुए ऊंट के बच्चे का होता है। आंखें जली कौड़ी के सदृश हो गई, परंतु अब भी बढ़े हुए काम विकट विशेषना को चित्त नहीं छोड़ता। यहाँ प्रथम द्वितीय चरणों के अंत में विकास और विलास इन पदों में आस की आवृत्ति हुई है एवं तृतीय तथा चरणों में अंत में अल्पम की आवृत्ति हुई है। पदांतगत अंत्यानुप्रास का उदाहरण मंदम, यहाँ हसंता और वहंता इन पदों के अंत में अंत की आवृत्ति हुई है। शब्दार्थयोः पौनरुक्तम भेदे तात्पर्य मात्रतः लाटानुप्रास इत्युक्तो। उदाहरणम् स्मेर राजीव नयने नयने किम् निमीलिते पश्चनेजित कंदर्पम कंदर्पम वशगम प्रियम। अत्र विभक्त्यर्थस्य पौनरुक्तेपि मुख्यतरस्य प्रातिपदिकांशाद्योत्यधर्मि रूपस्याभिन्नार्थत्वाल्लाटानुप्रासत्वमेव नयने तस्येव नयने च। अत्र द्वितीय नयन शब्दो भाग्यवत्त्वादि गुण विशिष्टत्व रूप तात्पर्य मात्रेण भिन्नार्थः शब्दार्थयोरिति, केवल तात्पर्य भिन्न होने से शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होने से लाटानुप्रास होता है। उदाहरण स्मरेत हे विकसित कमल के तुल्य नेत्र वाली सखी, तूने नेत्र क्यों मुद लिए? अपनी शोभा से काम को जीतने वाली कामातुर प्रीतम की ओर देख। यहाँ नयने नयने और कंदर्प कंदर्प इन पदों में शब्द तथा अर्थ दोनों की आवृत्ति हुई है। शब्दों के अर्थ में भेद नहीं, परंतु तात्पर्य विषयभूत संबद्ध भिन्न है। पहला नयन पद संबोधनान्वयी अथवा उद्देश्यान्वयी है और दूसरा नयन पद क्रियान्वयी या विधेयान्वयी है। इस प्रकार दो बार आए हुए कंदर्प पद के स्वरूप और अर्थ में कोई भेद नहीं, शब्द भी वही और अर्थ भी वही, परंतु पहले निर्जित कंदर्प व्याकरण में सो गया येन सत्तम इस प्रकार का अर्थ है। उसमें कंदर्प पद उपमान में पर्यवसित होता है और निर्जित का कर्म होकर आया है। दूसरी बार कंदर्पस्य वशगम ऐसा अर्थ है, यहाँ कंदर्प पद संबंधी होकर अन्वित हुआ है, यही तात्पर्य भेद है। वाक्य में कर्तृत्व कर्मत्वादि रूप से संबद्ध को यहाँ तात्पर्य कहते हैं, उसका भेद होना चाहिए। प्रश्न, उक्त उदाहरण में नयन तथा कंदर्प शब्द ही दो बार आए हैं, विभक्तियाँ उनकी एक नहीं है, ये बदली हुई है, फिर पूरे अर्थ का पुनरुक्त कहाँ हुआ? विभक्त्यर्थ की तो आवृत्ति हुई ही नहीं। उत्तर, अत्रेति यहाँ विभक्त्यर्थ का पुनरुक्त विकट में आवृत्ति न होने पर भी जो प्रातिपदिक विकट में नयन और कंदर्प रूप अंश विकट में पद के हैं, उनके बौद्ध धर्मी रूप मुख्यतर अर्थ व्यकरण में नेत्र और काम तो अभिन्न ही है। अतः प्रधान की अभिन्नता होने के कारण प्राधान्येन ही विपदेशा इस न्याय के अनुसार यहाँ लाटानुप्रास ही है। उक्त उदाहरण में विभक्ति भिन्न थी, अब ऐसा उदाहरण देते हैं जिसमें प्रकृति प्रत्यय सबकी पुनरुक्ति है। नयने इति उसी के नेत्र नेत्र है, जो इस कामिनी को देखे धन्य सदैव तरुणो नयने तस्यैव नयने च। युवजनम मोहन विद्या भवितेयम यस्य सम्मुखे सम्मुखी, यह पद पहले आ चुका है। यहाँ पहला नयन पद उद्देश्य है और दूसरा विधेय, परंतु जो उद्देश्य है वही विधेय नहीं हो सकता। विधेय में कुछ अपूर्वता अवश्य होनी चाहिए, अपूर्व बोध्यत्वम विधित्वम यह नियम है। अतः दूसरी बार आया हुआ नयन पद अनन्वित और पुनरुक्त होने के कारण भाग्यवत्ता आदि गुणों की विशेषता को नेत्र में बताता है। उसी के नेत्र नेत्र हैं, अर्थात उसी के नेत्र भाग्यशाली नेत्र हैं। अत्रेति यहाँ पहला नयन पद नेतृत्व क्या वह चिन्ह को बोधित करता है और दूसरा लक्षणा से भाग्यवतादि गुण विशिष्ट नेत्रों को बोधित करता है एवं भाष्य का अतिशय यहाँ व्यंग है। इसी अपूर्वता का बोध दूसरी बार आए हुए विधेयान्वयी नैने पद से होता है। यहाँ अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है क्योंकि दूसरा नैन पद अपने विशेष अर्थांतर विकट में भाग्यशाली नैन में संक्रमित हुआ है। विकट में यह विषय चतुर्थ परिच्छेद में स्पष्ट हो चुका है। यहाँ एक नैन्य उद्देश्य है, दूसरा विधेय। पहला सामान्य बोधक है परंतु दूसरा भागवत्ता आदि गुणों की विशेषता रूप तात्पर्य से ही केवल भिन्न है। मतलब यह है कि दोनों नैन पद कहते तो नेत्रों को ही हैं, परंतु एक सामान्यता बोधन कराता है और दूसरा भाग्यशालिता आदि गुणों के साथ नेत्रों का बोधन करता है। एक उद्देश्य है, दूसरा विधेय। यहाँ शब्द भी वही और अर्थ भी वही, केवल तात्पर्य का भेद है। अतः यह लाटानुप्रास का उदाहरण है। इस उदाहरण में संपूर्ण पदार्थ ही पौन रुक्त है। तर्कवागीश जी ने इस पंक्ति पर बड़ा अकांड तांडव किया है। वह कहते हैं कि नैने तस्यव नैने यह लाटानुप्रास का उदाहरण ही नहीं, यह तो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण है। फिर साहित्य दर्पणकार ने इसे लाटानुप्रास के उदाहरणों में रखा क्यों? इसका उत्तर आप देते हैं कि कोई इसे लाटानुप्रास का उदाहरण न समझ ले, इसलिए यहाँ लिख दिया है। आपको यह भ्रम क्यों हुआ सो भी सुन लीजिए। सप्तम परिच्छेद में कथित पद दोष की आदोषता के जो स्थल बताए हैं उनमें लाटानुप्रास और अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि इन दोनों को ही गिनाया है। बस इसी से आपने यह सिद्धांत निकाला है कि ये दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते और मूल में अत्रद्वितीय नयन शब्दों तात्पर्य मात्र भिन्नार्थ यह पंक्ति जो भेदे तात्पर्य मात्रता इस लाटानुप्रास के लक्षण का स्पष्ट समन्वय समझा गई है उसे आप योजना विपरीत से मरोड़ते हैं, परंतु फिर भी बनता कुछ नहीं। अब आपकी बात को आप ही तीसरी मुख से सुनिए। ननवार्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वानावापततः शब्दार्थयो पौन रूप्यावभाषनेति पर्यवसाने वक्तृ तात्पर्य विषय विशेषणान्तर प्रतीत्या भिन्नार्थत्वावभाषने नायम अनुप्रास इत्यभिप्रायेण नयने इति। अर्थात अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि में यद्यपि आपाततः शब्द और अर्थ का पौन रूप्य भाषित होता है, परंतु विचार करने पर पर्यवसान में वक्ता का तत्पर किसी विशेषणांतर में प्रतीत होता है, अतः भिन्नता होने के कारण वहाँ उक्त ध्वनि में यह अनुप्रास नहीं होता। इस अभिप्राय से प्रत्युदाहरण देते हैं नैने तस्यैव नैने इति। विकट में तर्कवागीश जी की पंक्ति में ननु पद असंगत है क्योंकि आपने यह कोई पूर्व पक्ष नहीं किया, अपने मतानुसार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, परंतु आपके इस मत में मूल ग्रंथ की अगली पंक्ति संगत नहीं होती, अतः उसे आप विपरीत योजना करके लगाते हैं। द्वितीय थी भाग्यवत्वादि गुण रूपम यदि विशिष्टत्वम विशेषण तन्मात्रेण वक्र तात्पर्य मात्रेण भिन्नार्थ इति योजना वैपरीत्येनान्वय अतएव दयनीयथ लाटानुप्रासे अनुकंपायां प्रसादने अर्थांतर संक्रमिते वाच्य हर्ष्य उदाहरणे इत्यर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वने पृथक उपादानं संगच्छते मात्रपदेन नयनत्वस्य देवच्छेदः। इस अर्थ में मूल ग्रंथ की पंक्ति में मात्र शब्द को तात्पर्य शब्द के आगे से हटाकर विशिष्टत्व के आगे रखना पड़ता है और विशिष्टत्व के आगे रखे हुए रूप शब्द को वहाँ से हटा के गुण के आगे लगाना पड़ता है एवं विशिष्टत्व का विशेषण परक मानना पड़ता है। यही यहाँ योजना विपरीत है। वस्तुतः यहाँ योजना विपरीत अप्रामाणिक असंगत और अशुद्ध है क्योंकि व्याकरण के अनुसार समास के अंतर्गत उक्त पदों का दूसरे पदों के साथ उक्त प्रकार से अन्वय हो ही नहीं सकता और इस प्रकार संगत लगाने में कोई प्रमाण भी नहीं है। श्री तर्कवागीश जी विशिष्टत्व के आगे चिपकाए हुए मात्र शब्द से नैनत्व का व्यवच्छेद करना चाहते हैं आपके मत से द्वितीय नैने पद केवल भाग्यवत रूप गुण का बोधक है, नैनत्व का वाचक नहीं। वास्तव में मत यह भी अज्ञान मूलक है, इसे हम आगे स्पष्ट करेंगे। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि में दूसरा पद स्विशेष रूप अर्थांतर में संक्रमित होता है, अतः नैने तस्व नैने में दूसरा नैने पद नैन विशेष अर्थात भाग्यवत्व विशिष्ट नैनों का बोधक है, केवल भाग्यवत्व का बोधक जैसा कि तर्कवागीश जी मानते हैं नहीं हो सकता, क्योंकि भाग्यवत्व नैनत्व का व्याप्त धर्म नहीं है, वह हस्त पाद आदि में भी हो सकता है। अतः नैनत्व का विशेष भाग्यवत्व नहीं अपितु भाग्यवत्व विशिष्ट नैनत्व ही हो सकता है। इस कारण यहाँ पहला नैन पद सामान्य वाचक विकट में नैनत्वावच्छिन्न बोधक और दूसरा लक्षणा के द्वारा विशेष वाचक विकट में भाग्यवत्व विशिष्ट नैनत्वावच्छिन्न बोधक है। सामान्य और विशेष का अभेद संबंध ही हुआ करता है, जैसे आम्रो वृक्ष राजा देवदत्त इत्यादि में। एवं च अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि में प्रधान अर्थ की अभिन्नता ही रहा करती है। इस कारण तर्कवागीश जी का यह कथन कि पर्यवसाने भिन्नार्थत्वावभासने नायमनुप्रासः असंगत है, वस्तुतः यहाँ भिन्नता है ही नहीं, विशेषण की भिन्नता इस स्थान पर नहीं मानी जाती। प्रधानेन ही उपदेशा इस न्याय का आचरण होता है। यही बात स्मेर राजीव ने इस पूर्वोदाहरण की व्याख्या करते समय सूचित की है। इस प्रकार प्रकृति में उक्त योजना विपरीत की विकट में जो शास्त्र विरुद्ध है कोई आवश्यकता नहीं है। अब रही कथित पदत्व के आदोष स्थल में उक्त ध्वनि के पृथक निर्देश की बात, उसका उत्तर यह है कि लाटानुप्रास उक्त ध्वनि में अन्यत्र भी होता है, जैसे स्मेर राजीव इत्यादि में उक्त ध्वनि के न होने पर भी लाटानुप्रास है, अतः उक्त स्थल में उनका नाम निर्देश करना आवश्यक है। यह ठीक है कि उक्त ध्वनि लाटानुप्रास के अंतर्गत हो सकता है, परंतु अलंकार शास्त्र में ध्वनि की प्रतिष्ठा सबसे अधिक है। शब्दानुप्रास एक बहुत छोटी वस्तु है, अतः ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय से उसे पृथक कहा है। जैसे कोई कहे कि सब ब्राह्मण आ गए और वशिष्ठ जी भी आ गए, यद्यपि वशिष्ठ जी ब्राह्मणों के ही अंतर्गत हो सकते हैं, सब ब्राह्मणों का आगमन बताने से उनका आना भी सूचित हो सकता है, तथापि उनकी प्रधानता सूचित करने के लिए उनका पृथक निर्देश किया जाता है। इसी प्रकार उक्त स्थल में उक्त ध्वनि का पृथक निर्देश किया गया है। इस पृथक निर्देश के भरोसे तर्कवागीश जी का इस मुख्य ग्रंथ को इस प्रकार भ्रष्ट कर डालना भ्रममूलक और प्रामादिक है। यदि ग्रंथकार नैने को उदाहरण नहीं प्रत्युत प्रत्युदाहरण समझते होते तो अवश्य स्पष्ट शब्दों में अपना अभिप्राय प्रकाशित कर देते। लाटानुप्रास के उदाहरणों में चुपके से उनका प्रत्युदाहरण रख के लोगों को चक्कर में न डालते और न उसकी व्याख्या करते समय ऐसी उटपटांग पंक्ति लिखते जिसे तर्कवागीश जी योजना विपरीत करके लगाएं और उससे ग्रंथकार की अभ्युत्पन्नता सूचित हो। वस्तुतः पंक्ति सीधी सादी है, उसका अर्थ हम पहले कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार जब तक इसे उदाहरण न मान लिया जाए तब तक लाटानुप्रास के उदाहरण पूरे हो ही नहीं सकते। नैने तस्व नैने के अतिरिक्त संपूर्ण पद विकट में प्रकृति और प्रत्यय की आवृत्ति का कोई उदाहरण है ही नहीं। स्मेर राजीव पदांश की आवृत्ति का उदाहरण है और यस्य न सविधे अनेक पदों की आवृत्ति का उदाहरण है। एक पद की आवृत्ति का उदाहरण नैने यही है। तर्कवागीश जी ने मात्र पद से नैनत्व का व्यवच्छेद किया है, तात्पर्य यह है कि यदि दूसरे नैन शब्द को भी नैनत्व का वाचक मान लेंगे तो उद्देश्यता उच्छेदक विकट में नैनत्व और विधेयता उच्छेदक दोनों के एक हो जाने से घटो घटा की तरह यह भी शब्द बोध न हो सकेगा। अतः द्वितीय नैन शब्द नैनत्व का बोधक नहीं केवल भाग्यवत्ता आदि गुणों का बोधक है, यह कथन भी असंगत है, क्योंकि अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि में पुनरुक्त पद अपने विशेष का बोधन करता है, अन्य का नहीं। नैन का विशेष भाग्यवत नैन ही हो सकता है, हस्तपाद आदि नहीं। अतः नैनत्व का बोधन अत्यंत आवश्यक है। लक्षणा से भाग्यवत नयन का ही भान होता है, गुण मात्र का नहीं। एवं यहाँ घटो नीलघट की तरह नैनत्वावच्छिन्नोद्देश्यताक भाग्यत्व विशिष्ट नैनत्वावच्छिन्न विधेयताक साबोध होता है। यस्य न सविधेयदयिता दवदहनस्तु हि नदी धितस्तस्य, यस्य न सविधेयदयिता दवदहनस्तु हि नदी धितस्तस्य। अत्र अनेक पदानां पौनरुक्तम् एष च प्रायेण लाटजन प्रियत्वा लाटानुप्रासः। अनेक पदों की पुनरुक्ति का उदाहरण यस्येति, जिसके समीप प्रिया नहीं उसके लिए चंद्रमा भी दावानल है, और जिसके पास वह विद्यमान है उसके लिए दावानल भी चंद्रमा है। अत्रेति, यहाँ अनेक पदों का पुनरुक्ति है। यहाँ पद शब्द अर्थ का भी उपलक्षण है, अतः पद और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति जानना इस पद के पूर्वार्ध में तुहिन दीदिति उद्देश्य और दवदहनत्व विधेय है, और उत्तरार्ध में दवदहन उद्देश्य और तुहि नदी धितित्व विधेय है। अतः यहाँ उद्देश्यता विधेयता रूप संबंध का भेद है। वह अनुप्रास प्रजा लाट देश के निवासियों को प्रिय होता है, अतः इसे लाटानुप्रास कहते हैं। अनुप्रास पंचधातुतः स्पष्टम् सत्यर्थे पृथगर्थाया सरव्यञ्जन संहते क्रमेण तेनैवा वृत्तिर्यमकम् विनिगद्यते। अत्र द्वयोरभिपादयोः क्वचित् सार्थकत्वम् क्वचित् निरर्थकत्वम् क्वचिदेकस्य सार्थकत्वम् अपरस्य निरर्थकत्वम्। अतोक्तम् सत्यर्थे इति तेनैव क्रमेणेति दमो मोदः इत्यादेर विविक्त विषयत्वम् सूचितम्। एतच्च पदपदार्थ श्लोकावृत्तित्वेन पादाद्यावृत्तिश्चानेकविधितया प्रभूतम भेदम दिङ्मात्रम् उदाह्यते। न पलाश पलाशवनम् पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम् मृदुलतांत लतांतमलोकयत्स सुरभिम् सुरभिम् सुमनोभरैः। अत्र पदावृत्तिः पलाश पलाश इति सुरभिम् सुरभिम् इत्यत्र च द्वयोः सार्थकत्वम्। लतांतलांत इत्यत्र प्रथमस्य निरर्थकत्वम्। पराग पराग इत्यत्र द्वितीयस्य। एवम् अन्यदप्युदाहार्यम् यमकादौ भवेत् दैक्यम् डलोर्बवोर्लवरोस्तथा इत्युक्तान्यात् भुजलताम् जड़ताम् बलाजनः इत्यत्र न यमकत्व हानिः। अन्यस्यान्यार्थकम् वाक्यम् मन्यथा योजयेद्यदि अन्यः श्लेषण काट्पा वा सा वक्रोक्तिस्ततोद्विधा अनुप्रासेति। इस कारण अनुप्रास पांच प्रकार का होता है, छेकानुप्रास, वित्तानुप्रास, वृत्तानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। नियमक का रक्षण करते हैं। सत्यर्थ इति यदि अर्थवान हो तो भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति को यमक कहते हैं। जिस समुदाय की आवृत्ति हो उसका एक अंश या सर्वांश यदि अनर्थक हो तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु उसके किसी एक अंश या सर्वांश के सार्थक होने पर आवृत्त समुदाय की भिन्नार्थकता आवश्यक है। समानार्थक शब्दों की आवृत्ति को यमक नहीं मानते। अत्रेति यमक के उदाहरणों में कहीं दोनों पद सार्थक होते हैं, कहीं दोनों निरर्थक, एवं कहीं एक सार्थक होता है और एक निरर्थक। इस कारण सत्यर्थे विकट में यदि अर्थ हो तो यह अंश लक्षणा में रखा है तेनैव इति, उसी क्रम से यह कहना दमो मोदः इत्यादिकों को यमक के उदाहरणों से पृथक करता है। एतच्चेति इसी यमकालंकार के पदावृत्ति पदावृत्ति अर्धावृत्ति श्लोकावृत्ति आदि भेदों के कारण और पदावृत्ति आदि भेदों के भी अनेक प्रकार होने के कारण बहुत अधिक भेद होते हैं। तिंग मात्रम इति कुछ थोड़े उदाहरण लेते हैं। नवेति जिसमें पलाशों व्यकरण में ढाकों का वन नवीन पलाशों व्यकरण पत्तों से युक्त हो गया, और कमल बढ़े हुए पराग व्यकरण पुष्पराज से परागत व्यकरण में युक्त हो गए एवं लतांत व्यकरण में लताओं के प्रांत जिसमें मृदुल व्यकरण में कोमल और तांत व्यकरण में विस्तृत या झुके हुए हो गए पुष्पों की अधिकता से सुरभि व्यकरण में सुगंधित उस सुरभि व्यकरण वसंत ऋतु को श्री कृष्ण ने रवि तक पर्वत पर देखा अत्रेति इस पद में पदावृत्ति यमक है पलाश पलाश और सुरभि सुरभि इसमें दोनों पद सार्थक है लतांत लतांत में पहला निरर्थक क्योंकि इस व्यकरण में लतांत में ल मृदुल शब्द से मिला है पराग पराग में दूसरा पराग निरर्थक है क्योंकि इसमें अगले गद शब्द का ग मिलाया गया है इसी प्रकार और भी पदावृत्ति यमक आदि के उदाहरण जानना यमकेति यमक श्लेष और चित्रों में डकार लकार और बकार वकार एवं लकार डकार आपस में अभिन्न समझे जाते हैं इस नियम के अनुसार भुजलताम इत्यादि पद में यमकत्व की क्षति नहीं होती है जिसमें जलताम जड़ताम कायम अक्षत रहता है क्योंकि ड और ल परस्पर अभिन्न समझे जाते हैं अन्यस्येति जहाँ किसी के अन्यार्थक वाक्य को कोई दूसरा पुरुष श्लेष से या काकू से अन्य अर्थ में लगा दे वहाँ दो प्रकार की वक्रोक्ति होती है एक श्लेष वक्रोक्ति दूसरी काकु वक्रोक्ति इनका क्रम से उदाहरण देते हैं द्विधेति श्लेष वक्रोक्ति काकु वक्रोक्ति क्रमेणोदाहरणम् केयम् यूयस्थल एव सम्प्रति वयम् प्रश्नो विशेषास्त्रयः किम् दूते विहगः सवा फलिपतिर्यत्रास्ति सुप्तो हरिः वामा यूयमहो विडम्बरसिकः कीदृक्ष्मरो वर्तते येनाश्माशु विवेकशून्यमनसः पुंस्त्वेव यो सिद्धमः अत्र विशेषपदस्य विपक्षी शेषो नागः इत्यर्थे द्वययोगात् सभंग श्लेषः अन्यत्र तुभंगः काले कोकिल वाचाले सहकार मनोहरे कृतगासः परित्यागत तस्याश्चेतो न दूयते अत्र कयाचित् सख्या निषेधार्थे नियुक्तो नैय अन्यथा काक्वा दूयत एवेति विद्यर्थे घटितः शब्दैरेक विधैरेव भाषासु विविधाश्वपि वाक्यम यत्र भवेत् स्वयं भाषासम इतिष्यते यथा मम मंजुलमणि मंजीरे कलगंभीरे विहार सरसी तीरे विरसासि के लिखीरे किमलि धीरे च गंधसारस समीरे के युयम के पद किम शब्द से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में भी बन सकता है और जलवाचक क शब्द के सप्तमी के एक वचन में भी बन सकता है प्रश्न करने वाले ने पूछा कि के यूयम अर्थात आप कौन हैं? इस वाक्य में किम शब्द का प्रथमांत रूप है परंतु उत्तर देने वाले ने उस शब्द विकट में के दूसरे श्लिष्ट अर्थ विकट में जल को लक्ष्य करके उत्तर दिया स्थले इति हम तो इस समय स्थल में ही हैं, विकट में जल में नहीं प्रश्न फिर कहता है कि प्रश्नो विशेषेति मेरा प्रश्न विशेष परख है अर्थात मैं आपकी विशेषता नाम ग्राम जाति आदि जानना चाहता हूँ उत्तरदाता ने अभी प्रश्न के विशेष शब्द का दूसरा अर्थ व्यकरण में वी मने पक्षी और शेष मतलब शेष नाग विकट बंद करके ही उत्तर दिया है किम ब्रूते इति अर्थात यदि आपका प्रश्न विशेष पक्षी और नागराज से है तो बताइए तो सही कि विहग और वह फणिपति जिनके ऊपर विष्णु भगवान सोते हैं क्या कहते हैं इस वाक्छल से तंग आकर प्रश्ता ने कहा कि वामा यूयम तुम कुटिल हो उत्तरदाता ने इस पर फिर भी वामा पद का दूसरा अर्थ व्यकरण में स्त्री करके बेचारे प्रश्न करने वाले को फटकारना शुरू कर दिया अहो इति देखो कैसा धूर्त है इसे कैसे काम ने सता रखा है जो इसे हमारे जैसे पुरुषों में भी स्त्री का भ्रम हो रहा है अत्रेति इस पद में विशेष पद में वी विकट में पक्षी और शेषे विकट में नाग ये दो अर्थ निकलते हैं अतः यहाँ सभंग श्लेष है क्योंकि यहाँ पद के अंशों को तोड़कर विकट में भंग करके दूसरा अर्थ निकलता है और पदों में विकट में के आदि में विकट बंद अभंग श्लेष है, क्योंकि वहाँ कोई पद तोड़ना नहीं पड़ता। यह श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण काकू वक्रोक्ति का उदाहरण देते हैं। काल इति कोकिल जिसमें कुहक रही है और बोरे हुए नवीन पल्लव युक्त आमों से जो मनोहर है उस विकट में वसंत समय में कृतापराध पति के परित्याग से उस नायिका का चित्त खिन्न नहीं होता। अत्रेति न दूयते का न निषेध के सूचन करने को कहा गया था। उसे किसी सखी ने काकू विकट में गले की ध्वनि से उच्चारण करते हुए दूयते एव विकट में अवश्य खिन्न होता है। इस प्रकार के विधि स्वरूप में अन्यथा परिणित कर दिया। शब्द रीति जहाँ एक ही प्रकार के शब्दों से अनेक भाषाओं में वही वाक्य रहे उसे भाषा सम अलंकार कहते हैं। जब अनेक भाषाओं में वही पद रहे तब अलंकार होता है और यदि पद भिन्न हो जाए तो भाषा श्लेष होता है। जैसे वक्षमाड़ महदेशु इत्यादि में शब्दों को तोड़ने और अर्थ के भिन्न होने से भाषा श्लेष होता है। मंजुलेती मानवती के प्रति सखी का वचन हे अली मनोहर और गंभीर ध्वनि करने वाले रमणी मणियुक्त मंजीरों ब्रिकट में पैर के भूषण छागल ब्रिकट बंद पर तथा क्रीड़ा शुक्र और धीर ब्रिकट में मंद मंद चलने वाले ब्रिकट बंद चंदन गंध से युक्त मल्यानील पर भी क्या तू रूठी ब्रिकट में विरस प्रेम रहित है जिस पर रूठी है उस से रूठी रह। इन बेचारे मंजरादिकों ने क्या बिगाड़ा है। मंजीर पहन ले क्रीड़ा सरती पर चल क्रीड़ा सुख से बोल और मल्या नील का सेवन कर जिस पर रूठी है उससे मत बोलना इति भावः। एष श्लोकः संस्कृत प्राकृत सौरसेनी प्राच्यावंती नागर राप भ्रंश श्वेक विध एव सरसम कैण कव्वम इत्यादि तु सरसम इत्यत्र संस्कृत प्राकृतयो साम्येपि वाक्यगत्वाभावे वैचित्र्याभावा न्याय अलंकारः सृष्टे पदैरनेकार्थ विधाने श्लेषयिष्यते वर्ण प्रत्यय लिंगानां प्रकृत्योः पदयोरपि श्लेषाद् विभक्तिवचनं भाषाणां अष्टधा च सह। क्रमेणोदाहरणम् प्रतिकूलतामुपगते हि वधौ विफलत्वमेति वौषाधनता अवलम्बनाय दिनभर दुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि। अत्र विधौ इति विधु विधि शब्दयो रुकारे रेकारयो रौकार रूपत्वात् श्लेषः गिरणा हरिणाङ्कस्य दक्षिणश्च समीरणः कान्तोत्सङ्गजुषां नूनं सर्व एव सुधाकिरः। अत्र सुधाकिरः इति कृप् कप्रत्ययोः किञ्चात्र बहुवचनैक वचनयोरैक रूप्याद् वचनश्लेषोऽपि किसन्नेत्रनीलाब्जे तथा तन्व्याः स्तनद्वयी तव दत्तां सदा मोदं लसत्तरलहारिणी। अत्र नपुंसक स्त्रीलिङ्गयोः श्लेषो वचनश्लोकेऽपि एष इति। यह श्लोक संस्कृत प्राकृत सौरसेनी प्राच्या अवंती आदि भाषाओं में एक सा ही है। इसके ये शब्द इन सब भाषाओं में इसी स्वरूप में बोले जाते हैं। सौरसेनी आदि प्राकृत के ही भेद हैं। सरसम कवे काव्यम इस वाक्य में सरसम पद यद्यपि संस्कृत प्राकृत में समान है परंतु वाक्यगत समानता नहीं है, अतः वैचित्र न होने से यहाँ यह अलंकार नहीं है। श्लिष्ट रीति श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का अभिधान होने पर श्लेषा अलंकार होता है। वर्ण प्रत्यय लिंग प्रकृति पद विभक्ति वचन और भाषा इनके श्लिष्ट होने के कारण वर्ण श्लेष प्रत्यय श्लेष आदि भेदों से यह अलंकार 8 प्रकार का होता है। क्रम से उदाहरण देते हैं। प्रतिकूलेति विधि विकट में दैव अथवा विधु विकट में चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर सब साधन विफल हो जाते हैं। गिरने ब्रिकट में अस्त होने के समय सूर्य के हजार कर ब्रिकट में किरणा अथवा हाथ भी सहारा देने को पर्याप्त न हो सके। विकट में, क्योंकि विधु प्रतिकूल दिशा में स्थित था। पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय सूर्य की विपरीत विकट में पूर्व दिशा में चंद्रमा निकला करता है। जब सहस्त्र कर वाले सूर्य भी विधु की प्रतिकूलता के समय गिरने से न बच सके तो विधि की प्रतिकूलता में औरों की तो बात ही क्या। अत्रेति, यहाँ विधव इस पद में विधि और विधु शब्दों के अंतिम वर्ण विकट में इकार और उकार अवकार के रूप में आ गए हैं, अतः उक्त दोनों वर्णों का यहाँ श्लेष है। विधव पद से दोनों अर्थ प्रतीत होते हैं। इस अवकार में केवल नीव प्रत्यय का औ नहीं है, किंतु प्रकृति के अत आदेश को मिलाकर भी वृद्धि हुई है, अतः इसे प्रत्यश्लेष नहीं कह सकते, वर्णश्लेष ही कह सकते हैं। प्रत्यश्लेष का उदाहरण देते हैं, किरणा इति, यहाँ सुधाम कीर्ति, इस विग्रह में क्री विक्षेपे धातु से यदि पिप प्रत्यय करें तो हलंत विकट में रेफांत सुधा किर शब्द बनता है, और यदि उसी विग्रह में उसी धातु से इगुपधा ज्ञाप्त्रिकिरह कह इस सूत्र से क प्रत्यय करें तो अकारांत सुधाकिर शब्द बनता है और प्रथमा के एक वचन में सुधाकिरह बन जाता है। इस प्रकार किप और क इन प्रत्ययों का एक वचन और बहुवचन, इन दोनों वचनों में यह पद श्लिष्ट है। इसी प्रकार एव शब्द होने पर सर्वे इस बहुवचनांत का और सर्व इस एक वचनांत का संधि होने से सर्व यही रूप रहता है। अर्थ चंद्रमा के किरण और दक्षिण से आने वाला मलयानिल यह सब अथवा ये सब प्रीतमा के संग रहने वालों को सुधावर्षी हैं। यहाँ एक वचन तथा बहुवचन के भेद से दोनों अर्थ होते हैं। अत्रेति, सुधाकिरा में क्विप और का प्रत्यय श्लेष है एवं बहुवचन तथा एक वचन के एक रूप होने के कारण यहाँ वचन श्लेष भी है। लिंग श्लेष का उदाहरण देते हैं, विकसन्निति, पुंसक लिंग में लसत तरल हारिन शब्द से प्रथमा के द्विवचन में लसत तरल हारिणी पद सिद्ध होता है और स्त्रीलिंग में लसत तरल हारिणी शब्द से प्रथमा के एक वचन में वही पद सिद्ध होता है। इस प्रकार आत्मन्य पद में दा धातु से लोट लकार लाने पर प्रथम पुरुष के एक वचन में दाताम बनता है और परस्मय पद में उसी धातु से उसी लकार के उसी पुरुष के द्विवचन में भी यही रूप बनता है। अतः इन दोनों पदों का नपुंसक लिंग द्विवचनांत विकसन्नेत्र लीलाब्जे के साथ भी संबंध होता है और स्त्रीलिंग एक वचनांत स्तनद्वयी के साथ भी, इसलिए यह अर्थ हुआ कि उस तन्वी के विलासयुक्त चंचल और मनोहारी दोनों खिले हुए नेत्र रूप नीलकमल तुम्हें सदा आनंद दें तथा सुशोभित तरल ब्रिकट में बीच की मड़ी ब्रिकट बंद से युक्त मुक्ताहार वाली उस स्तनत गई तुम्हें सदा आनंद दे। यहाँ लसत तरल हारणी और दत्ताम दोनों ओर लगते हैं। अत्रेति, यहाँ नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग का एवं द्विवचन और एक वचन का श्लेष है। अयम सर्वाणि शास्त्राणि हृदगेषु च वक्षति सामर्थ्यकृद मित्राणाम मित्राणाम च निपात्मजः अत्र वक्षति इति वतिवच्योः सामर्थ्यकृत इति कृञ्चति करोत्योः प्रकृत्योः पृथुकार्थस्वर पात्रम् इत्यादि। अत्र पदभंगे विभक्ति समासयोरपि वैलक्षण्यात् पदश्लेषः न तु प्रकृतिश्लेषः एवं च नीतानाम कुलीभावम् लुब्धैर्भूरिशिली मुखे सदसे वनवृद्धानां कमलानां तदीक्षणे। अत्र लुब्धशिली मुखादि शब्दानां श्लिष्टत्वेपि विभक्तेरभेदात् प्रकृतिश्लेषः, अन्यथा सर्वत्र पदश्लेष प्रसंगः। त्वस्त्वं हर सर्वस्य त्वं भवेच्छेदत्तत्परः नयोपकार सामुख्यम् अयासि तनुवर्तनम्। अत्र हर इति पक्षे शिव संबोधनम् इति शुभ पक्षे हृधातोस्तिङि विभक्ते एवं भव इत्यादौ अस्य च भेदस्य प्रत्ययश्लेषाणि गतार्थत्वे प्रत्ययान्तर साध सुबंत तिगंत गतत्वेन विवच्छित्ति विशेषाश्रयणात् पृथगुत्ति ही महादेशुर संदम में तमव समासंग मागम हरणे हरबहु शरणम तम चित्त मोहमोशर उमेश सा प्रकृति श्लेष का उदाहरण देते हैं। अयम इति वह प्रापरणे और वच परिभाषणे दोनों धातुओं से लृट लकार में वक्षति रूप बनता है और डुक्री करने तथा कृति छेदने इन दोनों धातुओं से क्विप प्रत्यय करने से कृत शब्द बनता है। अतः इस पद्य का अर्थ होता है कि वह राजकुमार हृदय में सब शास्त्रों को विकट में वक्षति वह धातु विकट बंध धारण करेगा और विद्वानों के बीच उन्हीं सब शास्त्रों को विकट में वक्षति वच धातु विकट बंध कहेगा और यह मित्रों के सामर्थ्य को उत्पन्न करने वाला विकट में कृत डुक्री विकट बंध है तथा अमित्रों के सामर्थ्य को छेदन करने वाला विकट में कृत कृति छेदने विकट बंध है। अत्रेति यहाँ वक्षति में वह और वच एवं सामर्थ्य कृत में क्रिया और कृति इन प्रकृतियों का श्लेष है। पृथुकेति इस पूर्वोक्त पद्य में पदभंग करने पर विभक्ति और समास भी भिन्न हो जाते हैं अतः यहाँ पदश्लेष है प्रकृति श्लेष नहीं। इसी प्रकार नीता नाम इति लुब्धों विकट में व्याधों से भूरि बराबर बहुत श्ली मुखों बराबर बाणों के द्वारा आकुली भाव बराबर त्रास को प्राप्त वन में पले हुए कमलों बराबर हरिणों के तुल्य विकट में मृग भेदेपि कमलः इति मेदिनी विकट बंध अथवा लुब्ध विकट में गंध के लोभी विकट बंध बहुत सिली मुखों बराबर भ्रमरों से आकुली भाव विकट में संकुलत्व को प्राप्त वन बराबर जल में विकट में जीवनम भुवनम वनम इत्यमरः विकट बंध बड़े हुए कमलों पद्मों के तुल्य उसके नेत्र हैं। अत्रेति यहाँ यद्यपि लुब्ध सिली मुख कमल वन आदि शब्द श्लिष्ट हैं तथापि यह पदश्लेष नहीं है क्योंकि यहाँ विभक्तियों का भेद नहीं है। पदश्लेष वही माना जाता है जहाँ विभक्ति समास आदि का भेद होता हो जैसे पृथुकात स्वर इत्यादि पद में। यहाँ विभक्ति आदि के अभेद में भी पदश्लेष माने तो सब जगह पदश्लेष ही हो जाए प्रकृति श्लेष कहीं रहे ही नहीं क्योंकि केवल प्रकृति का बिना प्रत्यय के तो कहीं प्रयोग होता ही नहीं। नापि केवलः प्रकृति प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः यह महाभाष्य का नियम है। अतः प्रत्यय के अभेद में प्रकृति श्लेष और प्रत्यादि के भेद में पदश्लेष माना जाता है। विभक्ति श्लेष का उदाहरण देते हैं सर्वस्वम इति किसी पकड़े गए डाकू ने शिव मंदिर के पास खड़े हुए अपने पुत्र को देखकर यह पद्य पढ़ा है। इससे शिव जी की स्तुति भी निकलती है और पुत्र को उपदेश भी निकलता है। शिव के पक्ष में इस प्रकार अर्थ होता है हे हर विकट में शिव तुम सबके सर्वस्व हो अर्थात सभी पुरुष तुम्हें अपना सर्वस्व समझते हैं और तुम भव विकट में संसार के छेदन करने में तत्पर हो अर्थात अपने भक्तों को संसार के बंधनों से छुड़ाते हो एवं नए विकट में न्याय तथा उपकार का सामुख्य विकट में साधन करने वाली शरीर वृत्ति विकट में तनुवर्तन को प्राप्त हो अर्थात आपके सब व्यवहार ऐसे हैं जिनसे परोपकार और न्याय होता है। दूसरे पक्ष में यह अर्थ है कि हे पुत्र तुम सर्वस्व सर्वस्वम हर अर्थात तू सब का सर्वस्व लुटा दे तुम छेद तत्परो भव तू सबके छेदन में तत्पर हो उपकार सामुख्यम नय विकट में अपने विकट बंध किसी का उपकार मत कर एवं आयासी वर्तनम तनु अर्थात दूसरों के पीड़ा देने वाले व्यवहार को विस्तार कर। अत्रेति यहाँ हर पद एक पक्ष में शिव जी का संबोधन होने के कारण सुबंत है और दूसरे पक्ष में क्रिया होने के कारण तिगंत है। इस प्रकार भव पद एक पक्ष में संबोधन सुबंत है और दूसरे पक्ष में तिगंत है अतः इन दोनों पदों में सुबंत और तिगंत रूप विभक्तियों का श्लेष है। यद्यपि सुप्तिंग रूप विभक्ति भी प्रत्यय ही होती है अतः विभक्ति श्लेष प्रत्यय श्लेष के ही अंतर्गत हो सकता है। तथापि दूसरे प्रत्ययों के साध्य न होने तथा विशेष चमत्कारक होने के कारण विभक्ति श्लेष का पृथक कथन किया है। भाषा श्लेष का उदाहरण देते हैं, महादेव इत्यादि। यह पद संस्कृत तथा महाराष्ट्र प्राकृत दोनों में पढ़ा जा सकता है। संस्कृत का अर्थ है हे महादेव, मह अर्थात उत्सव को देने वाली उमा बराबर पार्वती देवी। आगम शास्त्र के आहरण विकट में उपार्जन बराबर अध्ययन विकट बंद। मैं सुरसंद देवताओं के भी प्रार्थनीय समासंग बराबर प्रेम अथवा आसक्ति को अब रक्षा करो और अवसर पड़ने पर अनेक प्रकार से फैलने वाले चित्त के व्यामोह को सहसा शीघ्रम हर हरण करो। यह किसी विद्यार्थी की भगवती से प्रार्थना है। प्राकृत पक्ष में अर्थ मह मुझे देशु देव रसम प्रेम धर्मे धर्म में अर्थात मुझे धर्म विषय प्रेम प्रदान करो। तमवशम तमोगुण प्रधानम आशम आशा को गमगमा संसार से हर हरण करो। ने नह हमारी तमोगुण प्रधान आशा को संसार से हटाओ। हे हर बहु हर वधु पार्वती तम तुम शरणम शरण हो। मैं मेरा चित्त मोहम चित्त का मोह अवसर उ बराबर दूर हो। सहसा शीघ्र ही मेरा चित्त का मोह शीघ्र ही दूर करो। इस प्राकृत पद संस्कृत यह है, मम देही समधर में तमो वशाम आशाम संसार धर नह हर वधु शरणम तुम चित्त मोह अपसरतु मैं सहसा।